अगला टॉपिक देख लेते हैं, वक्त के बारे में मुसलमान की ज़िम्मेदारी। बड़ा अहम टॉपिक है। पेज 26, वक्त के बारे में मुसलमान की ज़िम्मेदारी। जब वक्त की इतनी ज़्यादा अहमियत है, यहाँ तक कि वक्त ही को ज़िंदगी से ताबीर किया गया, तो एक मुसलमान पर वक्त के एतबार से बड़ी ज़िम्मेदारियाँ आयत होती हैं। इसलिए इसे चाहिए कि इन ज़िम्मेदारियों को समझे और हमेशा इन्हें अपने पेशे नज़र रखे और इल्म व इदराक के दायरे से आगे बढ़कर इन्हें अमली जामा पहनाने की कोशिश करें। बात वाज़े? देखिए, वक्त तो नहीं रोक सकते, लेकिन आपने मैंने करना क्या है कि इस वक्त को इस्तेमाल करना है। क्या करें? सबसे पहली चीज़, अब इस पर आप 1, 2, 3 लिख लीजिए बुक में, तो आपको बाद में याद रहेंगे, और अगर हाइलाइटर के साथ मेन पॉइंट को हाईलाइट कर लें तो इंशाल्लाह आपको पहली नज़र में फिर याद हो जाएगा। पहली चीज़, वक्त से इस्तफादे की हिर्स रखें। इस्तफादा कहते हैं फ़ायदा उठाना, बेनिफिट लेना। यानी एक मुसलमान की ये ज़िम्मेदारी है कि वक्त से फ़ायदा उठाने की हिरस रखे। लोग कहते हैं वक्त गुजार रहे हैं, वक्त गुजारने की चीज़ नहीं है, वक्त इस्तेमाल कीजिए। एक मुसलमान पर वक्त के ताल्लुक से सबसे पहली ज़िम्मेदारी ये आयत होती है कि वो इस तरह इसकी हिफाजत करे जिस तरह अपने माल और असबाब की हिफाजत करता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा अपने औकात से फ़ायदा उठाने का हरीस हो। अपने औकात ऐसे कामों में लगाए जिनका फ़ायदा इसे दुनिया और आखरत में दोनों जगह पर पहुँचे। हाईलाइट करने के काबिल क्या चीज़ है? जिस तरह माल, सोना, चांदी, दूसरी चीज़ों को इस्तेमाल करता है या कीमती समझता है, इस तरह अपने वक्त को भी समझे। हमारे सलाफ़ यानी पहले वाले लोग, बुज़ुर्ग, अपने औकात से फ़ायदा उठाने के मामले में सबसे ज़्यादा हरीस थे, इसलिए कि वो इसकी कदर व कीमत से वाकिफ थे। देखिएगा चंद मिसालें। हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो तुम्हारी हिरसे दिरहम व दीनार से ज़्यादा अपने औकात के हरीस थे। यानी लोग एक एक दिरहम बचाते हैं ना, दिरहम को यूरो कर लेते हैं, एक एक यूरो पे झगड़ते हैं लोग। इस पर एक पूरा टॉपिक है इल्म के बाब में, मैंने किसी जगह शेयर की थी कुछ चीज़ें, कि एक बुज़ुर्ग थे तो लिख रहे थे और लिखने लिखने में उनका कलम ख़त्म हो गया, टूट गया। आवाज़ लगाई, कौन है जो मुझे एक दिरहम के बदले में कलम दे दे? तो लोगों ने कलमों की बुछाड़ कर दी। एक दिरहम चांदी का सिक्का होता है, कोई थोड़ा नहीं था। किसी ने पूछा, आपने इतनी कीमत क्यों लगाई? कहा, इसलिए कि अगर जो मैं सोचे मेरे दिमाग में थी, जो मैं लिख रहा था, अगर मैं पेन सस्ता ढूंढने ख़रीदने जाता तो मेरी वो सोचें चली जाती। तो कीमत थी ना, इल्म की कदर थी। फिर इसी तरह से इससे अंदाज़ा होता है कि इन बुज़ुर्गों की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती थी कि अपने औकात को मुसलसल अमल के ज़रिए हमेशा आबाद रखें और इसके बेफ़ायदा ज़ाया होने से होशियार रहें। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह कौन थे? जिनको उमर सानी भी कहते हैं, फरमाते हैं, शब और रोज़ तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, तुम इनमें काम करो। कितना अच्छा जुमला है, रात और दिन मेरे आपके लिए आ रहा है ना, तो हम भी इसमें कुछ करें। इन बुज़ुर्गों के नज़दीक बर्बादी वक्त नाराज़गी रब की अलामत थी, और इनका मकूला था कि वक्त दो धारी तलवार है जिसकी काट दो तरफा है, अगर तुमने इसे अपने हक में इस्तेमाल ना किया तो इसके मानी ये हैं कि वो तुम्हारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ। इसीलिए वो लोग हमेशा खूब से खूब तर की तरफ पेश कदमी की कोशिश करते थे, और इनमें से हर शख्स ये चाहता था कि इसका आज कल से बेहतर हो और आने वाला कल आज से बेहतर हो। इन्हीं बुज़ुर्गों में से किसी का कॉल है, जिसका आज कल जैसा रहा, अपने ऊपर लें। आज क्या है? इतवार। कल क्या था? हफ्ता। अगर मेरा कल यानी हफ्ता और आज के इतवार में मेरे अंदर कोई फ़र्क नहीं आया, मुझसे मेरी नमाज पहले से बेहतर नहीं हुई, मेरा अखलाक, मेरे मामलात और सब कुछ, तो वो खसारे में है। और जिसका आज उसके कल से बदतर रहा, यानी कल मैं ज़्यादा अच्छी थी, आज ज़्यादा बुरी हो गई हूँ, तो वो तो मलून है। और मलून किसको कहते हैं? रहमत से दूर। इन बुज़ुर्गों की ये शदीद ख्वाहिश होती थी कि इनका कोई दिन और इस दिन का कोई लम्हा भी ऐसा ना गुजरे जिसमें इन्होंने कोई इल्मे नाफे ना हासिल किया हो, या कोई अमल साले हो, मुजाहिदा नफ्स ना किया हो, या बंदगाने खुदा को किसी किस्म का फ़ायदा ना पहुँचाया हो। तीन बातें आपके मेरे लिए अमल के लिए। नंबर एक, हर दिन इल्मे नाफे हासिल करें। इस वक्त जो इल्म ले रहे हैं ये नाफे है, फ़ायदा होगा इससे, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात, अमले सालेह, नेक अमल, और मुजाहिदा नफ्स। मुजाहिदा नफ्स क्या होता है भला? सेल्फ कंट्रोल, नफ्स के खिलाफ चलिए, नफ्स तो हमेशा ही रुसवा करवाना चाहता है। और तीसरी चीज़, अल्लाह के बंदों को नफ़ा दें। ये है असल सोच जो बंदे से काम लेती है, मैंने अल्लाह के बंदों को नफ़ा देना है और अल्लाह हमें ज़ाया होने से बचाए। वो तेज़ी से गुज़रती हुई अपनी उम्र के सिलसिले में फ़िक्रमंद होते थे कि वो यूं ही गुज़र जाए, गुबार की तरह उड़कर ख़त्म हो जाए या झाग की तरह खुश्क हो जाए और इन्हें इसका शऊर भी ना हो। वो लोग इस बात को वक्त की नाकदरी तसव्वुर करते थे कि इनका कोई दिन इस हाल में गुज़रे कि उन्होंने कोई खैर का काम ना किया हो। हमारा कोई गुज़रता है ऐसा दिन जिस दिन कोई भी खैर का काम ना किया हो, और ख़ास तौर पर जब हमारे घरों में खुशियों के मौके आते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा अपने उस दिन पर नादिम होता हूँ जिसका सूरज डूब जाता है और मेरी उम्र का एक दिन कम हो जाता है, मगर इसमें मेरे अमल में कोई इजाफा नहीं होता। और छुट्टियाँ हमारी कहाँ ज़ाया होती हैं, छुट्टियाँ कुछ नहीं, सो सो के सोते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दूसरे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जब मेरे ऊपर कोई ऐसा दिन गुजरता है जिसमें किसी ऐसे इल्म का इजाफा नहीं होता जो मुझे अल्लाह से करीब कर दे, तो मैं इस दिन को अपने लिए बेबरकत तसव्वुर करता हूँ। आप और मैं पूछें अपने आप से, अल्लाह से करीब करने वाला इल्म मुझे मिलता है हर रोज़? और अगर ना मिले तो वो दिन बेबरकत है। और यकीन कीजिए, मैं अपने लिए आपको बता सकती हूँ ये बात जो मैंने खुद चूज़ की है कि अगर मैं किसी एक दिन ना पढ़ूं या पढ़ाऊं तो मेरे उस दिन में बरकत नहीं होती। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये ट्रिप बड़ा बेवक्त लगा हो कि ईद से इतना करीब है, आपके पास तो पहुंचते हुए ईद के 5-6 दिन गुजर ही गए, आज तो 7वां दिन है ना, लेकिन मैंने तो ईद वाले दिन से ट्रेवल शुरू किया, ईद के दूसरे दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह दर्स हुआ। वजह क्या है कि अपनी जगह पे कोई ना शायद आए सुनने कि बहुत सुन लिया, फिर सुन लेंगे, लेकिन दूसरी जगह जाएं तो कोई ना कोई तो सुन ही लेता है ना। मैं अपने ऊपर लेके बता सकती हूँ कि अगर मैं छुट्टियों में चली जाऊँ ना, छुट्टी घर पे हूँ पूरा वक्त, कुछ ना करूँ, तो मेरा वो दिन इंतहाई डिप्रेशन में गुजरता है। दुख, डिप्रेशन से मुराद वो नहीं है जो ज़हनी कैफियत है, लेकिन कसलमंदी, सुस्ती, नहुसत। तो कुछ सीखें या सिखाएं, दूसरों को दें या खुद लें। वो तेज़ी से गुजरती हुई अपनी उम्र के सिलसिले में फ़िक्रमंद होते हैं कि वो यूं ही गुजर जाए, गुबार की तरह उड़कर ख़त्म हो जाए या झाग की तरह खुश्क हो जाए और इन्हें इसका शऊर भी ना हो। एक हकीम का कॉल है कि जिसने अपनी उम्र का कोई दिन इस हाल में गुजारा कि ना तो किसी हक का फैसला किया, ना कोई फ़र्ज अदा किया, ना मजद व शर्फ की बुनियाद रखी। मजद क्या है? बुजुर्गी, यानी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कोई शान या शर्फ मिलता, ना कोई काबिल तहसीन काम किया और ना इल्म हासिल किया, तो इसने अपने इस दिन के साथ बदसलूकी की और अपने ऊपर जुल्म किया। आज अक्सरियत कैसे गुजार रही है वक्त? तो लिहाजा पहली चीज़ हमने क्या सीखी, वक्त से फ़ायदा उठाने की हिरस रखना एक मोमिन की, एक मुसलमान की, ईमान वाले की जिम्मेदारी है। दूसरी चीज़, सेकेंड टॉपिक, वक्त पास करने वाले। पास क्या होता है? टाइम पास कर रहे हैं। बस लोगों की बातें सुनकर ऐसे लगता है जैसे ट्रेन स्टेशन पे बैठे और मौत की ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई मकसद नहीं जीने का, खाना खाने के लिए जीते हैं। वो किसी ने कहा ना कि एक जगह थी तो वहाँ वो फ्री खाना खिलाते थे, कोई होगा लंगर ऐसा, तो कुछ लोग गए और खा रहे हैं, खा रहे हैं, खाते रहे 2-2.5 घंटे, तो फिर खाने का वक्त भी ख़त्म हुआ, समेटा समाटी हुई, तो उन्होंने कहा कि चले उठे, कहते नहीं बैठे रहो, अब फिर दोबारा भी तो रात को खुलना ही है, एक दफ़ा रात का खाना खा के जाएंगे। कुछ लोग इस तरह जीते हैं। तो वक्त पास करने की चीज़ नहीं है। आइए देखते हैं इसको। एक तरफ हम अपने असलाफ को देखते हैं कि वो वक्त के ताल्लुक से इंतहाई हरीस थे, इसलिए इन्हें इसकी हकीकी कदर व कीमत का बखूबी अंदाज़ा था। और दूसरी तरफ हम आज के मुसलमानों को देखते हैं कि वो वक्त इस दर्जा बेपरवाही से ज़ाया कर रहे हैं, इनकी ये बर्बादी औकात तबजीर से बढ़कर जुल्म व ज़्यादती तक पहुंच जाती है। और मैं एक जुमला इधर बोल दूं, माओं को बुरा ना लगे, ये वक्त की बर्बादी माँ खुद सिखाती है गोद के बच्चे को, हाथ में अपना ही फोन देकर कि खेल लो उछलो। और बच्चा रोनी शक्ल बनाकर उस वक्त आता है जब उसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी होती है कि अब इसको और भर दो। शुरू से ये कल्चर बनता जा रहा है कि हम अपने बच्चों का वक्त ज़ाया करते हैं, बड़ों का तो करेंगे। जिसको शुरू से आदत पड़ गई, बताइए वो बड़े होकर उस वक्त के बारे में कहाँ कॉन्शियस होगा। पहली माएँ पेंसिल रबड़ पकड़ाती थी, कागज़ कलम पकड़ाती थी, अब फ़ोन पकड़ाती हैं। कभी अपने बच्चों के साथ ये जुल्म ना करें, उनको वक्त की दौलत का एहसास ही नहीं होगा। हालांकि हक तो ये है कि औकात को ज़ाया करने के सिलसिले की हमाकत माल को ज़ाया करने की हमाकत से ज़्यादा संगीन है। और ये वक्त को बर्बाद करने वाले और इसके साथ जुल्म करने वाले लोग इन लोगों के मुकाबले में ज़्यादा सज़ा के मुस्तहिक हैं जो माल बर्बाद करने वाले हैं। इसलिए कि माल अगर बर्बाद हो जाए तो इसका बदल मुमकिन है, मगर वक्त की बर्बादी का कोई बदल नहीं। आजकल मजलिसों, चौपालों और क्लबों में हर एक की जुबान से बस एक ही जुमला सुनने को मिलता है कि हम वक्त काट रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, जिसे आमतौर पर लोग वक्त गुजारी से भी ताबीर करते हैं। हम देखते हैं कि ये जालिम और वक्त की हकीकत से गाफिल लोग घंटों शतरंज, ताश के पत्तों और मुख्तलिफ खेलों में गुजार देते हैं। इन्हें इसकी परवाह नहीं होती कि ये खेल हलाल है कि हराम। और इसी हाल में वो नमाज और याद इलाही और दूसरे दीनी और दुनियावी जिम्मेदारियों से गाफिल होकर बैठे रहते हैं। अगर आप इनसे पूछें कि क्या कर रहे हैं, तो इनका साफ जवाब होगा वक्त काट रहे हैं। हालांकि इन नादानों को मालूम नहीं कि वो वक्त को नहीं बल्कि हकीकत में अपने आप को काट रहे हैं। ये दर हकीकत सुस्त रफ्तार खुदकुशी है जिसका इर्तकाब बरसरे आम हो रहा है, मगर कोई इस पर मुआखजा यानी पकड़ करने वाला नहीं। लेकिन जिसे इसकी संगीनी का एहसास ना हो, वो इस पर मुआखजा कैसे कर सकता है? क्या आपको अपने इर्द गिर्द दिखते हैं ऐसे लोग जो सिर्फ वक्त पास करते हैं? देखिए, हमारे कल्चर में आजकल एक एवरेज शादी कितना वक्त लेती है? कम से कम 3 दिन का फंक्शन, मेहंदी, शादी और वलीमा। पहले तो 3 थे, अब इसमें 2-3 और शामिल हो गए। निकाह का अलग दिन, भाई क्या करने जा रहे हैं बेवकूफ़ बन के निकाह करने? तो लड़की ले आओ, नहीं कल जाएंगे दोबारा। यानी बेवकूफ़ी की हद तक हम शादियों पे वक्त ज़ाया करते हैं। खाने भी खिलाते हैं, चलो निकाह सादगी से करना था तो ख़त्म हो गई बात, निकाह पे भी खाना खा के आएंगे। मुझे समझ नहीं, किसी एक जगह हम इन्वाइटेड थे, मुझे बिल्कुल, और गए भी दूसरे शहर। इंतहाई बेवकूफ़ी, सच्ची बात है, बेवकूफ़ी है। बसें हायर करो, गाड़ियां निकालो, गर्मी सर्दी रात 8 बजे घर से निकलो, 9-10 बजे 11 बजे वहां पहुंचो, खूब झमझमेले से निकाह करो, खाना खाओ, वापस आ जाओ। लड़की भी तैयार बैठी है, लड़का भी तैयार है, आज के नहीं निकल आएंगे लेने। बेवकूफ़ी नहीं है? फिर वो, फिर छोटा वलीमा, फिर बड़ा वलीमा, फिर मुखलावा। यानी एक एक शादी कम अज़ कम, अल्लाह झूठ ना बोले, 8-10 खानों पर निबटती है। और वक्त, फिर पैसा, फिर माल, फिर इसराफ, और सोच और नमाज, क्या क्या ज़ाया करते हैं। इतना वक्त है हमारे पास, 3 घंटे तो कम से कम हम हॉल में जाके बैठते हैं खाने के इंतज़ार में, फिर कहीं खाना मिलता है। और खा पी के 5-6 घंटे का जिहाद करके घर आते हैं। 6 घंटे के लिए बुलाएं हज़रा किसी को, कुरान के लिए 3 सुपारे पढ़ सकता है बंदा अगर तर्जमे से पढ़े तो। अल्लाह हमें वक्त की कदर डाल दे। और वो जो राउंड टेबल मीटिंग्स होती हैं, निरी गिफ्तों से भरी पड़ी, हर राउंड टेबल पे एक कॉन्फ्रेंस हो रही होती है जिसमें किसी तीसरे के गुनाह माफ़ हो रहे होते हैं। अल्लाह हमें हिदायत दे। याद रखिए, जितना बेकार वक्त होगा ना, उतना दूसरों को आप डिस्कस करेंगे। अल्लाह हमारी इसलाह कर दे। नेक्स्ट थिंग, खाली वक्त को गनीमत जानना, ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। हर एक के पास होता है, शुक्र किया करें। जब खाली लम्हे मिले, उसमें बहुत सारे काम समेट सकते हैं आप और मैं। खाली वक्त को गनीमत कैसे जाने? फुर्सत और फरागत की नेमत भी नेमतों में से एक है जिनसे अक्सर लोग गाफिल हैं और इनकी कदर व कीमत से बिल्कुल ना वाकिफ़ हैं, इसीलिए हकीकी मानों में इनका शुक्र अदा नहीं करते। इमाम बुखारी अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप मेरे साथ दोहरा लीजिए, नेमतानी मखबूनुन। ये जो लफ्ज़ है ना मखबून, जो वही है जो उर्दू में गबन है। गबन तो समझते हैं ना, गबन कर दिया, फ्रॉड, यही लफ्ज़ है। इधर सूरह तगाबुन भी इसी से ही लफ्ज़ है। क्या है? फी हिमा कसीरुम मिनन नासी। और ये दो चीज़ें क्या है, 1 और 2 लिखी है बुक पे, असेहतु वल फराग। दो नेमतें ऐसी हैं जिनके मामले में बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं, एक तंदुरुस्ती और दूसरी फरागत। क्या मतलब? यानी वक्त पर इनकी कदर नहीं करते और जब ये नेमतें इनसे छिन जाती हैं तो काफी अफसोस मलते हैं। सच है कि नहीं? तो आज वक्त और सेहत है तो इसकी कदर कर लें। और ये इन बहुत सी वाज़े नसूस, नसूस कहते हैं दलाइल, नस से, के मनाफी नहीं जो इंसान को कस्बे रिस्क और तलबे मुआश पर उभारती हैं। हाँ, ये चीज़ें इस वक्त मुनाफी होंगी जब इंसान को दुनियावी ज़िंदगी और इसके मुतालबात में गर्क कर दें और इसे अल्लाह के हकूक़ की अदायगी से गाफिल करें। हदीस में मकबून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया जो गबन से है, और गबन दरअसल खरीदो फरोख्त और तिजारत में होता है। अलामा मिनावी के बकौल यहाँ इंसान को ताजिर से तशबीह दी गई है और सेहत और फरागत को रासुल माल से, रासुल माल क्या होता है? कैपिटल, जिससे तिजारत की जाती है। इसलिए कि ये दोनों चीज़ें हसूल नफ़ा के असबाब में से हैं और ये इंसान की कामयाबी की इब्तदाई कड़ियाँ हैं। इसलिए जो शख्स अल्लाह के साथ इतात व फरमाबरदारी का मामला करेगा वो फ़ायदे में रहेगा, और जो शैतान की पैरवी करेगा वो अपने सरमाए को बर्बाद करेगा। और यह हदीस सही बुखारी में 6412 नंबर की हदीस है। एक और दूसरी हदीस जिसमें पांच चीज़ों को पांच चीज़ों से पहले गनीमत जानने का जिक्र है, सुनी होगी हदीस, बहुत आम है। इनमें से एक क्या है कि अपनी फुर्सत के औकात को मशगूलियत से पहले गनीमत जानो। इख्तनिम कब खमसन कबला खम्स, और ये मुस्तदरिक हाकिम की रिवायत है और सही रिवायत है, बुखारी मुस्लिम में भी मौजूद है। फरागत हमेशा फरागत नहीं रहती बल्कि इसका खैर या शर से पुर होना नागुज़ीर है। यानी जब आप फारिग हैं ना तो या तो आप उससे खैर समेटेंगे या शर। जो शख्स अपने आप को हक के कामों में मशगूल नहीं रखता वो बातिल के कामों में मशगूल हो जाता है। आप आजमा लें, आप फारिग बैठे शैतान आपको उल्टी सीधी चीज़ें देखने और पढ़ने को कहेगा, ये देख लो, वो कर लो, ये कर लो, तो बेहतर है कि अच्छे ही काम करते रहें। इसलिए वो लोग काबिले स्ताइश हैं जिन लोगों ने अपनी फुर्सत के औकात को खैर और इसलाह के कामों में इस्तेमाल किया, और हलाकतों बर्बादी हो इन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी फरागत को शर और फसाद से भर दिया। और यहाँ फिर इजाज़त दीजिए कहने की कि आज फ़न, मीडिया, एंटरटेनमेंट के नाम पे क्या कुछ खुराफात ज़िंदगियों में भर गई। मुसलमान के पास इतना वक्त है कि वो घंटों के एतबार से स्क्रीन्स को देखता रहे। अल्लाह ताला वक्त की इस बर्बादी से बचा के रखे आपको मुझे। बस सालेहीन का कौल है कि फरागत वक्त एक अजीम नेमत है, लेकिन जब बंदा इस नेमत की नाकदरी करता है वो इस तरह के अपने ऊपर ख्वाहिश नफ्स का दरवाज़ा खोल लेता है और शहवानी ख्वाहिशों के पीछे भागता है। शहवानी क्या? शहवत उभारने वाली लस्ट। इस तरह के अपने ऊपर ख्वाहिश नफ्स का दरवाज़ा खोल लेता है और शहवानी ख्वाहिशों के पीछे भागता है, तो इसका नतीजा ये होता है कि अल्लाह इस पर बेचैनी और बेसकूनी मुसल्लत कर देता है और इसकी सफाई कल्ब को सल्ब कर लेता है। और यहाँ देखिए, अपने बच्चों पे ही काम करना शुरू करते हैं, कभी अपने बच्चों को फारिग ना छोड़े, ख़ास तौर पे 7-8 साल के बच्चे, जब एक चेंजेस करीब हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं। मसरूफ़, कीप देम बिज़ी, कुछ नहीं अपने साथ किचन में खड़ा कर लें। आप बर्तन धो रही हैं तो वो लगा रहे हैं, आप पोछ रही हैं, कोई बात नहीं, लड़के हैं तो भी, लड़की हैं तो भी। बाप लड़कों को मसरूफ़ रखे, माएँ बेटियों को मसरूफ़ रखें, और पहले ऐसे ही होता था, अब तो माँ बेचारी मशीन बन के सारा दिन काम करती रहे, ऐसे लगता है जैसे नौकरानी है और बेटियां घर में अंदर बैठ के राज कर रही हैं। ये भी कल्चर, ख़राब कल्चर है, और जिसने हमारे बच्चों के वक्त की जो एक दौलत थी उसको छीन लिया। यही वजह कि हमारे असलाफ इस बात को नापसंद करते थे कि आदमी बेकार बैठा रहे, ना वो दीन का काम करे ना दुनिया का। इस सूरत में ये फरागत बजाय नेमत के फारिग शख्स के लिए अजाब बन जाती है, और इसमें मर्द और औरत सब यकसां हैं। चुनाचे मशहूर कौल है कि फरागत मर्दों के लिए गफलत का बायस है और औरतों के लिए बेहयाई में बढ़ने का। अज़ीज़े मिस्र की बीवी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर फरेफ्तगी और दीवानगी और इन्हें अपने दाम में फंसाने की कोशिश सिर्फ इसकी बेकारी और फरागत का नतीजा थी। आज भी बड़े घरों की औरतें बाज़ दफ़ा इसी किस्म के मशगलों में, किटी पार्टी, कमेटी पार्टी, फुलाम पार्टी, अब उधर कंसर्ट, अब उधर घूमना, अब उधर एग्ज़िबिशन, और वक्त ज़ाया कर रहे हैं। बाद लोग सिर्फ वक्त ज़ाया करने को ज़िंदगी गुजारना कहते हैं। इस फरागत की संगीनी इस वक्त और ज़्यादा हो जाती है जब इनके साथ जवानी भी जमा हो जाए और वो जिनसी कुव्वत और माली कुदरत के ज़रिए नुमाया हो। यानी वो माली कुदरत हासिल हो जो इंसान के लिए हर दिल पसंद चीज़ का हसूल मुमकिन बना दे। तो क्या पता चला कि वक्त काटना नहीं है, इसको इस्तेमाल करना है। करना क्या है फिर? वक्त को संभाल के रखना है। कैसे? आप देखिए, हम सोना चांदी तो लॉकरों में रख देते हैं, पैसा बैंकों में रख देते हैं, और वक्त किनके हाथों में? बेकार लोगों के। अपनी ज़िंदगी से चुन चुन के उन लोगों को निकालिए जो आपका वक्त ले जाते हैं। बाज़ दफ़ा आप देखिए, सिर्फ एक दोस्त मिलने आ जाती है, 3 4 घंटे मरे, और किया क्या उसमें? जोड़े डिस्कस किए, चलिए वक्त ही ज़ाया किया ना, जेवर की बातें की, चलिए, लेकिन जो दूसरों की बातें करते हैं उसमें, और जो रिश्तों का तिया पांचा करते हैं, तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे वक्त में बरकत दे। ठीक है, फिर यहाँ आज रुकते हैं। आपने इस सारे हिस्से को जाके दोबारा पढ़ना, और जो इसमें छोटी छोटी एक्टिविटीज़ थी इसको करें, और ख़ास तौर पे अगर आप चाहें इससे फ़ायदा उठाना, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स अपने बच्चों और शौहर या घर में जो भी हैं, माँ बाप हैं, बहनें, उनके साथ शेयर करें। क्योंकि देखिए, एक ये भी बात है, हम अकेले अपना वक्त नहीं बचा सकते, क्योंकि अगर हम बचाएंगे ना, दूसरे ले लेते हैं। तो आप इस काम को फैमिली एक्टिविटी के साथ करें, अपने घर वालों को कहें कि आजकल हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमने क्या करना है, एक कंस्ट्रक्टिव काम करना है। और अपने बच्चों को, घर वालों को, जो भी घर में फैमिली मेम्बर्स, उनको साथ मिलाइए, क्या वो ढूंढते हैं हमारा वक्त कहाँ जाता है, और खाने भी वो पकाइए जिसमें वक्त कम लगे। आप देखेंगे कि आपके घर से कितना वक्त चोरी शुदा निकल आएगा, और आपके वक्त में बरकत होगी। और सबसे पहले शऊर दें, अंदर से शऊर उभरेगा ना, तो फिर इंशाल्लाह ये एहसास बहुत ज़्यादा होगा हमें। तो यहाँ पे रुकते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक।